ओम शांति, ओम शांति। हम सभी जनवरी मास में, जिसे ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास भी कहते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम अपने में अपनाएं। बाबा में और हमारे में क्या कमी है, उस कमी को हम दूर करें। हम बाप समान ही समान बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं। कर रहे हैं ना, क्या कहेंगे, ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं सब जन्म मास में। हर दिन 18 जनवरी तक ब्रह्मा बाबा के दम मुरली के बाद आते थे, मधुबन से सबको भेजे गए। तो उसके लिए बाबा बहुत सहज विधि बताते हैं हमें, फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं। एक दो को फॉलो नहीं करना है, किसको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा। वो नंबर वन आत्मा है जिसने बाबा की श्रीमत को बिल्कुल एक्यूरेट पालन किया, और उनके जीवन को देखकर, क्योंकि वो स्वयं प्रवृत्ति में रहते थे, प्रवृत्ति के बाद शिव बाबा की प्रविष्टता उनके अंदर, वो खुद भी बिजनेस में रहे, उन्होंने खुद भी गुरु किए, दुनिया के सब अनुभव बाबा को थे। और उसके बाद जब शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, तो कैसे उनके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ गया, वो सब हम सुनते हैं। कई बार कई भाई बहने सोचते हैं कि हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, तो कैसे उनको फॉलो करें, क्या कहेंगे, देखा या नहीं देखा। तो केवल आंखों से देखने की बात नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। जैसे हम कहेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में हम सुनते हैं, अब आज की जनरेशन ने थोड़ी महात्मा गांधी को देखा है, देखा है किसी ने जो इस सभा में बैठे हैं, लेकिन महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि महात्मा गांधी का जीवन कैसा था, महात्मा गांधी के जीवन के आदर्श क्या थे, उन्होंने क्या कर्तव्य किए जो वो राष्ट्रपिता कहे, वो महात्मा कहलाए, तो क्या कहेंगे, जानते कि नहीं जानते। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप के बारे में भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने जो भी वरिष्ठ हैं, जो ब्रह्मा बाबा के समय रहे, साकार पालना इन्होंने, वो उनके चरित्र हमें सुनाते हैं। खुद शिव बाबा भी मुरलियों में उनके बारे में हमें बताते रहते हैं, तो उससे हम जानते हैं कि बाबा के कर्म कैसे थे, बाबा के संकल्प बोल कर्म कैसे थे। और उसको ही हमें कॉपी करना है, दुनिया में तो कॉपी करने को अच्छा नहीं माना जाता, नकल करेंगे तो कहेंगे कि ये गलत काम है, नकल नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तो बाबा कहते हैं जितना कॉपी करेंगे उतना तीव्र शास्त्री बन जाएंगे, उतना ही जल्दी हम संपन्न बन जाएंगे। तो यहाँ तो कॉपी करने की पूरी छूट है कि बाबा को हमें कॉपी करना है। तो बाबा ने जो संकल्प किए, बाबा के संकल्प सदा ही शुभ भावना, शुभ कामना के थे, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना के थे। बाबा सर्व के प्रति सदा कल्याणकारी रहे, तो ऐसे संकल्प होने चाहिए, हर आत्मा के प्रति उसकी विशेषता से उसका उमंग उत्साह बढ़ाएं, ये बाबा की भावना रही सभी आत्माओं के प्रति। बोल में भी बाकी बोल ऐसे थे कि वो हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना देते थे, या जिस जो निराश है उसमें आशा का संचार कर देते थे, या सेवा में भी वो आगे बढ़ जाएं, ऐसे बोल थे बाबा के। हम सुनते हैं दादियों से, जो भी अपनी वरिष्ठ बहने हैं, वो कहते हैं जब हम बाबा से मिले और बाबा ने हमें जो कहा, तो उस समय हमने उसे साधारण ही समझा कि बाबा हमसे मिल रहे हैं और हमें ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वही बाबा के बोल जैसे हमारे लिए वरदान बन गए। और आज जो बाबा ने हमें कहा वो हमारे लिए सच हो गया, जिसको कहा ना सत्वचन महाराज, तो यानी बोल जो थे वो बाबा के, वो इतने मधुर अनमोल युक्ति युक्त थे कि वो आत्माओं के लिए वरदान बन गए। आज भी हम जब दादियों से मिलते हैं तो हम क्या सोचते हैं, दादियां हमारे प्रति कोई दो बोल बोलें तो वो उनके बोल हमारे लिए क्या होंगे, वरदानी बोल होंगे। तो क्यों बोल की वैल्यू है, क्योंकि बाबा ने सदा अपने बोल की वैल्यू रखी, यानी कभी भी किसी को दुख देने वाले बोल, किसी का पान करने वाले बोल, किसी को नीचा दिखाने वाले गिराने वाले बोल, ऐसे बोल बाबा के मुख से कभी नहीं निकले। तो हम बच्चों को भी फॉलो करना है ना, तो हमें इस बात पर अटेंशन रखना है कि आज तक भी क्या हमारे मुख से ऐसे बोल तो नहीं निकल जाते। ऐसे ही बाबा के जो कर्म थे वो कर्म भी शिव बाबा के श्रीमत प्रमाण, सदा श्रेष्ठ कर्म किए। अमृत वेले से रात तक जिस विधि पूर्वक हमें कर्म करने चाहिए, जो हमारी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए, चाहे बाबा की इतनी अधिक आयु थी ना, 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, लेकिन बाबा कभी भी अपनी दिनचर्या में अलबेले नहीं रहे, कभी कोई बहाना नहीं दिया कि ये कारण बना ना इसीलिए अमृत वेला नहीं हुआ या इसीलिए मुरली नहीं हुई। लेकिन जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, ये बाबा ने सदा मंत्र पका रखा। हमेशा अपने कर्मों से बच्चों को प्रेरणा दी। और ऐसे ही जब शुरू शुरू में बाबा की प्रवेशता हुई तो सबसे पहला कदम जो बाबा ने उठाया वो था समर्पण था। हम सुनते हैं ना, कि पूरी तरह से सर्वंश समर्पित हुए या कहें सर्वंश त्यागी, एक धक से बिना कोई संशय किए हुए या बिना कोई भविष्य की चिंता किए हुए। कोई उस समय तो भविष्य स्पष्ट नहीं था, आज तो हमारे सामने बहुत उदाहरण है। बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, एकदम नया ज्ञान जैसे कहेंगे, सब कुछ एकदम नई शुरुआत। तो कितना अटल निश्चय होगा ये हम समझ सकते हैं बाबा के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर, जो बाबा ने तुरंत अपना सब कुछ, इतना सब कारोबार, धन, राजाओं से संबंध था हम सब जानते हैं, वो बाबा ने समर्पित किया। तन मन धन संबंध चारों ही, तन तो शिव बाबा का रथ बना, तो फिर तन को अपना कभी समझा ही नहीं कि मेरा ये तन शिव बाबा का है, सेवा अर्थ है, उसमें मेरा पन वाला भाव फिर रहा ही नहीं। मन बुद्धि को भी मन मना भव किया, और इसीलिए मैंपन की बुद्धि कहेंगे उसका अभिमान का त्याग बिल्कुल पहले दिन से ही। बाबा ने हमेशा क्या कहा अपने लिए, मैं सेवाधारी हूं, बच्चों का भी मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तो सदा अपने आप को सेवाधारी कहलाया, सदा ही निमित्त समझा, करण करावन हार बाबा है। और ऐसे ही धन समर्पित किया, वो भी बहनों माताओं का ट्रस्ट बनाया, अपने नाम नहीं, अपनी बहनें जो थी उस समय, 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया और पूरा का पूरा धन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। हालांकि लौकिक परिवार था, 2 बेटे थे बाबा के, सोच सकते थे कि पता नहीं भविष्य में, जैसे कहा ना, प्रश्न उठ सकता था, हर एक अपने भविष्य की चिंता करता है, थोड़ा तो हम अपने भविष्य के लिए रख दें, थोड़ा तो अपने बच्चों के लिए रख दें, पता नहीं कल इन बच्चों का भविष्य क्या है, क्योंकि एक बेटा तो बहुत छोटा था, जो नारायण दादा थे उस समय उनकी आयु अधिक नहीं थी, 1 बेटे की शादी हो चुकी थी, जिनकी बहू दादी ब्रजेंद्रा थी, हम सुनते हैं जिनको पहले पहले बाबा का साक्षात्कार, शिव बाबा की जब प्रवेशता हुई तो जो पहली दृष्टा थी उसकी, वो ब्रजेंद्रा दादी थी, जिनका नाम राधिका था। तो बाबा ने अपने बेटों के लिए भी नहीं और अपने भविष्य के लिए भी नहीं, सारा का सारा धन पूरी तरह से सेवा में लगा दिया। तो हमारे लिए भी, हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो हमें भी फॉलो करना है, पर हमें बाबा उस तरह की श्रीमत नहीं देते। बाबा कहते हैं उस समय तो भट्टी बननी थी, तो ये सब जो भी परिवार आए, ब्रह्मा बाबा भी आए और भी अन्य परिवार भी आए, वो सब पूरा का पूरा समर्पित हुए। लेकिन हमारे लिए श्रीमत है कि जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, जो हम कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा, जैसे बाबा हमारा वारिस है, तो हमें बाबा की सेवा अर्थ जरूर लगाना है। जैसे बाबा ने समझा कि ये देना नहीं है, लेकिन ये पदम गुना लेना है, ये तो हमारा अविनाशी बैंक में जमा होता है। तो ऐसे ही जो भी हम बाबा की सेवा में लगाते हैं, वो हम देते नहीं हैं, लेकिन और ही उसे पदम गुना करके हमें वो प्राप्ति हो जाती है। वर्तमान में भी अनुभव करते हैं और भविष्य तो जमा हो ही रहा है, आज की मुरली में भी था ना, अकिचार धन मिलता है, अकिचार माना अथाह धन, यहाँ तक कि जो प्रजा की प्रजा भी होती है वो भी पूरी धनवान होती है, जब सतयुग त्रेता में होंगे तब। ऐसे ही संबंधों को भी बाबा ने अलौकिक बनाया, अपना लौकिक परिवार था, लौकिक परिवार को छोड़ा नहीं बाबा ने, लेकिन उनके प्रति दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन किया, उनके प्रति अपनी भाव भावना का परिवर्तन किया। पत्नी थी वो पत्नी के प्रति वो भाव, बहू थी बहू के प्रति वो भाव, बेटे के प्रति मेरा बेटा है, ये भाव नहीं रहा बाबा का। जैसे और बाबा के बच्चे हैं, ऐसे ये भी बच्चे हैं, और इसीलिए उनका भी जो भाव था बाबा के प्रति वो बदल गया। पत्नी का भी बाबा में वो भाव नहीं था कि ये मेरे पति हैं, उनके लिए भी वही भाव जैसे अन्य बाबा समझते थे, ऐसे वो भी फिर बाबा को बाबा ही वैसे देखती थी। ऐसे ही हमें भी वो लौकिक परिवार में रहते हुए अपनी भाव और भावना को अपने संबंधों के प्रति बदलना है। बाबा हमेशा कहते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम आत्मा भाई भाई हैं, पर अंदर में हम समझते हैं कि ये संबंध तो सिर्फ सांसारिक रूप से हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने अनादि संबंध में तो क्या हैं, भाई भाई हैं, चाहे परिवार में रहते हैं। और बाबा ने हमें एक दो की सेवा के निमित्त रखा है, उसमें मेरापन नहीं हो। किसने रखा है, किसने ये संबंध दिए हैं, बाबा ने दिए हैं। तो जो नष्टो मोहा का भी आपने सुना, कैसे हमारा मोह नष्ट होगा, कैसे बाबा का एकदम मोह नष्ट हो गया अपने लौकिक परिवार के प्रति। बाबा ने कभी भी उनको एक्स्ट्रा सुविधाएं नहीं दी कि ये मेरा लौकिक परिवार है तो इसके लिए, इनके लिए कुछ विशेष होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना, ये मेरे हैं। जहां भी मेरा भाव होता है वहां कहीं ना कहीं व्यक्ति का थोड़ा झुकाव हो ही जाता है कि इनके प्रति हम थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे। बाबा ने कुछ नहीं एक्स्ट्रा उनको सुविधा दी, इतने नाजों से पलने वाले, जैसे कहेंगे ना बाबा ने शहजादे शहजादियों की तरह पाला अपने बच्चों को, क्योंकि इतने धन संपन्न थे, सुविधा संपन्न थे। लेकिन निर्मल शांता दादी जो उनकी बेटी थी, वो सुनाती थी कई बार कि सब काम किए उन्होंने यज्ञ में, सभी ने यज्ञ में सभी तरह की सेवाएं दी, तो उन्होंने भी किए, बर्तन मांजने की सेवा की, जूते सिलाई करने की सेवा की, और गोबर के जो गोले बनाते थे वो भी गोबर के गोले भी बनाए। तो एक बार का वो सुनाते थे कि ब्रह्मा भोजन बना, और ब्रह्मा भोजन 400 लोगों का बनेगा तो बड़े बड़े बर्तन ही होते हैं उसके। तो अब उस समय उनको बर्तन मांजने की सेवा मिली थी, तो वो इतना बड़ा भगोना था कि वो उनसे साफ ही नहीं हो रहा था, उनका हाथ तले तक नहीं जा रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, समझ में नहीं आया कि इसको कैसे साफ करूं, तो फिर वो पतले में ही उतर गई, उतर के और उसको घिसने लगी। तो पतीला हिल रहा था लेकिन वो नहीं दिख रही थी, घिस रही थी तो पतीला ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो बाबा ने देखा कि ये पतीला कैसे हिल रहा है, उनको वो नहीं दिखाई दी। तो फिर वो गए, बाबा गए देखने के लिए कि पतीला क्यों हिल रहा है। तो देखा कि वो निर्मल शांता दादी जो है वो उसमें बैठ करके उसको घिस रही है। तो बाबा को भी बहुत हंसी आई ये दृश्य देख करके। तो कहने का भाव ये है कि बाबा ने अपने लौकिक परिवार को भी कोई विशेष की, हाँ ये मेरे बच्चे हैं इसलिए ये ऐसा काम नहीं करेंगे। हम तो सुनते हैं कि बाबा ने खुद भी सब सेवाएं की, बाबा ने सभी स्थूल सेवाएं बच्चों के साथ की, चाहे वो सब्जी काटना है, चाहे वो अनाज साफ करना है, और चाहे वही गोबर के गोले बनाना है। तो देह अभिमान का अंश मात्र भी नहीं, मैं कोई अथॉरिटी हूं, मैं कोई भगवान का रथ हूं, या थोड़ा भी मैंपन हो, जरा भी बाबा में नहीं रहा ये। तो हम बच्चों को भी बाबा को इसी तरह से फॉलो करना है कि जो भी सेवा हमें मिलती है यज्ञ में, ईश्वरीय परिवार में, जब हम कोई भी ऐसी सेवाओं के प्रोग्राम करते हैं, और हो सकता है कि हर एक को, वैसे तो हर एक की विशेषता देख करके ही सेवा दी जाती है, ऐसे तो ध्यान रखते हैं कि हाँ ये सेवा के योग्य हैं तो इनसे ये सेवा कराई जाए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि समझो कोई ऐसी सेवा है जिसमें अधिक लोगों की जरूरत है और हमारी भी आवश्यकता पड़ गई, और हमें भी समझो ब्रह्मा भोजन बनाने में मदद करना पड़ गया, या जो भी, जैसे कहा कि कोई भी ऐसी सफाई किससे संबंधित कोई कार्य है, या कोई ऐसे छोटे मोटे स्थूल कार्य हैं जो करने होते हैं, तो हमें संकोच नहीं हो। जब जो सेवा बाबा हमारे सामने लाता है वो सेवा हमारा भाग्य है, उसमें स्थिति का महत्व है। सेवा कौन सी हम कर रहे हैं उसका महत्व नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा के बराबर मार्क्स हैं। अगर हम निमित्त भाव से निर्विघ्न होकर के सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, तो जो भी सेवा हम कर रहे हैं, इसलिए कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बर्तन मांजना और भाषण करना, अगर आप ऊंची स्थिति में रहकर बर्तन भी साफ कर रहे हो, चाहे वो साधारण सेवा है, और चाहे आप भाषण कर रहे हो, दोनों के मार्क्स बराबर हैं। लेकिन स्थिति जो बाबा हमें कहते हैं वो स्थिति हमारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब हम साधारण सेवा कर रहे हैं तो हमारी स्थिति भी साधारण हो जाए। जो ब्रह्मा बाबा को देखा कि बाबा ने कोई भी सेवा की लेकिन बाबा की स्थिति सदा श्रेष्ठ थी, और इसीलिए वो कार्य करते करते भी अगर कोई बाबा से मिलने आते थे, बाबा वो कार्य करना नहीं छोड़ते थे और वो उसी में ही उनको साक्षात्कार हो जाते थे। वो हम सुनते हैं हिस्ट्री में, आपने ये सब बातें सुनी हुई हैं, बहुत भाई बहनों ने सुनी हुई हैं कि कैसे बाबा एक बार जब गोबर के गोले बना रहे थे और उसी समय कोई ऑफिसर मिलने के लिए आए सिरोही से, तो बहन ने बोला बाबा आपसे मिलने के लिए आए हैं। विजिटिंग रूम में बिठाया उनको कि बाबा विजिटिंग रूम में आएंगे मिलेंगे, तो बाबा ने कहा बच्ची उसको यहीं ले आओ। तो उसने उसको शर्म आई, उसने कहा बाबा वो आपको ऐसे देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि इनके जो बाबा हैं वो ये सब करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम चिंता मत करो, बाबा कहता है ले आओ। तो ठीक है, बाबा ने जो कहा और वो लेकर गई। तो जैसे ही वो ऑफिसर की दृष्टि बाबा पर पड़ी, माना आपस में उनकी दृष्टि मिली, वो ट्रांस में चले गए, उनका उनके इष्ट का साक्षात्कार हो गया। तो इतनी श्रेष्ठ स्थिति, वैसा ही श्रेष्ठ अनुभव भी उस आत्मा को हुआ। तो बाबा हमें भी कहते हैं कि देखने में लगे कि ये तो साधारण काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति महान हो कि ये महान आत्माएं हैं, वाइब्रेशन ऐसा आए दूसरों को कि नहीं ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है, ये तो महान आत्माएं हैं। स्थिति से पता चलता है ना कि ये आत्मा क्या है, कैसे इसकी दृष्टि वृत्ति है। तो वो हमारी स्थिति होनी चाहिए। संबंध संपर्क में बाबा ने हर आत्मा को विशेष अनुभव कराया ना। ऐसे ही लौकिक परिवार में हमें किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन संबंधों को पूरी तरह से निभाएं। इसीलिए राजयोग में हम कहते हैं कि हम दुनिया में लोग डरते हैं कि कहीं हम ज्ञान में चलेंगे तो हमसे कुछ छूट तो नहीं जाएगा, हमारा परिवार, हमारी जिम्मेवारियां, हमारा ये सब जो हम दूसरों को भी सुनाते हैं कि नहीं कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन क्या करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन अपने दृष्टि का, परिवर्तन अपनी वृत्ति का। तो जो संबंध संपर्क में बाबा का व्यवहार था वो बहुत स्नेह युक्त और सम्मान युक्त था। यानी बाबा हमेशा हर एक आत्मा को स्वमान देते थे, उसका स्वमान ऊंचा उठा देते थे। मानो बच्चों से मिलते थे तो बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही बाबा बन जाते थे। हम सुनते बच्चों के साथ बाबा खेल खेलते थे, है ना, बाबा जैसे वो कैरम वगैरह भी खेलते थे बच्चों के साथ। तो जैसे सम्मान का स्नेह और नजर भी उनके प्रति ऐसी ऊंची कि ये होवनहार विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। और कोई ना कोई ऐसे बोल उनके प्रति बाबा के होते थे जैसे कहा कि वही उनके लिए फिर सत्य हो गए जो हमारी दादियां सुनाते हैं। और ऐसे ही जो कुमार कुमारियों बाबा से मिलते थे तो बाबा हमेशा उनको कहते थे कि ये वो आत्माएं हैं जो असंभव को भी संभव करने वाली है। आज की दुनिया जिसको असंभव समझती है उसको ये संभव कर दिखाने वाले हैं, ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाली आत्माएं हैं। प्रवृत्ति वालों से मिलते थे बाबा, जो भी बुजुर्ग होते थे तो मेरे ही हमजींस हैं, मेरे ही समान अनुभवी आत्माएं हैं। बांधेलियों से मिलते थे तो ये याद में नंबर वन जाने वाली आत्माएं हैं। तो हर आत्मा को उसका स्वमान दिया। तो हमें भी जब एक दूसरे के संपर्क में आते हुए उनके गुण ग्राहक बनते हुए उनकी विशेषता को देखते हुए उनके स्वमान को बढ़ाना है। जैसे बाबा का संबंध संपर्क था ऐसा ही हमारा एक दो के प्रति संबंध संपर्क होना चाहिए। नहीं तो कलयुगी संबंध संपर्क क्या होता है, एक दो की कमियां ही देखते रहते हैं, फिर एक दो की शिकायत ही करते रहते हैं, या फिर एक दूसरे से उसके कारण थोड़ा घृणा दृष्टि हो जाती है या फिर गुस्सा आता है या कहीं ना कहीं उनके प्रति बदले की भावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि कमियां देख रहे हैं, गुण होंगे वो हमें नहीं दिखाई देंगे। कई बार बाबा कहते हैं कि उसके अंदर 35 गुण है, एक ही अवगुण है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता रहता है, वो एक ही अवगुण जो है वही हमें खटकता रहता है और हम सोचते हैं ये परफेक्ट क्यों नहीं है, ये भी अवगुण इसमें क्यों है, मेरे अंदर कितने अवगुण है वो भूल जाते हैं। दूसरा भी यही समझ रहा होगा ना कि ये परफेक्ट क्यों नहीं है, इसके अंदर इतनी कमियां क्यों है। जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल जैसा हम इनको चाहते हैं ऐसा इनको होना चाहिए, तो वो भी तो यही सोचेंगे हमारे लिए कि नहीं सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यही सोचेंगे ना। तो फिर किसको क्या देखना है, तो वो बाबा ने हमें सिखाया कि अपने आप को हमें देखना है, यानी अपनी कमियों को देखना है और दूसरों के गुणों को देखना है, अपनी कमियों को रियलाइज करके चेक करके चेंज करना है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया और वही हमें फॉलो करना है। फिर यज्ञ में बहुत विघ्न आए, हम सब जानते हैं बाबा ने कैसे विघ्नों को पार किया, और वो विघ्नों को होते हुए भी बाबा सदा अचल अटल अडोल रहे, हिले नहीं कभी भी। माना बाबा कभी भी निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि नहीं हुए कि भगवान का कार्य है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, कभी भी प्रश्नों में भी यानी प्रश्न चित्त भी नहीं बने कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, है ना ऐसा। और कितनी गालियां खानी पड़ी बाबा को, जो अपने लौकिक जीवन में इतने रिस्पेक्टेबल थे, इतना सम्मान मिलता था जिनको अपने समाज में, वही समाज उनके विरोध में खड़ा हो गया और वही समाज ने इतनी गालियां ही नहीं दी, कलंक भी लगाए बाबा के ऊपर। तो फिर क्या बाबा कभी मुरझाए या कभी दिल शिकस्त हुए, कभी निराश हुए? क्या समझा, इनका दोष नहीं है, ये निर्दोष हैं, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम ये किसका कार्य है, ये कौन करवा रहा है। और हमेशा ही उनके प्रति रहम दिल रहे, उनके प्रति फिर भी बाबा ने शुभ भावना रखी, यहां तक कि मारने के लिए भी आ गए। सुनते हैं ना हम कि एक को मारने के लिए भी भेज दिया बाबा को, लेकिन फिर भी बाबा ने उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया। पता चला, उसने सुना भी दिया जब उसको साक्षात्कार हुआ कि मुझे तो आपको मारने के लिए भेजा था, बाबा ने प्यार से उसको टोली दे करके विदाई दी। मुझे याद है दादी प्रकाशमणि जी सुनाते थे कि उनकी जो बड़ी बहन थी वो ज्ञान में आई और वो पवित्रता की धारणा उन्होंने अपनाई, तो उनके जो पति थे उस समय विदेश में थे, और जब वो वापस आए और उनको जब ये सब पता चला तो बहुत नाराज हो गए इस बात को लेकर के। और हम सुनते हैं कि मम्मा बाबा को कोर्ट में भी जाना पड़ा, तो यही स्थिति में, मतलब मम्मा कोर्ट में गई थी लेकिन उस समय उसने कलेक्टर ऑफिस में शिकायत कर दी, तो ब्रह्मा बाबा को बुलाया गया वहां पर। दादा थे उस समय तो ब्रह्मा बाबा नहीं कहलाते, दादा को वहां बुलाया गया कलेक्टर ऑफिस में, और उनके वो पति भी आए वहां पर, क्योंकि उनसे सवाल जवाब होने थे इस बात को लेकर के, क्योंकि उनकी पत्नी है और इनके सत्संग के प्रभाव में जो है वो इतना उस पर असर हो गया है। तो जब वो पूछ रहे थे, बाबा से पूछ रहे थे और बाबा जवाब दे रहे थे, उनको इतना गुस्सा, जो उनके पति थे, इतना गुस्सा कि वो सीधे गालियां देने लगे। तो दादी जी थी, क्योंकि वो उनके जीजाजी थे, तो दादी साथ में गई थी उनके, तो दादी कहती हैं कि उनके गालियां सुन करके मुझे आ रहा था कि मैं इनको जवाब दूं, बाबा क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सब कितना गलत कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे। तो उन्होंने कहा कि उस समय मुझे वो दृश्य याद आ रहा था जो कहते हैं कि शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी, तो बिल्कुल वही दृश्य था वहां की, वो बिना सोचे बाबा को गालियां देते जा रहे थे और बाबा बिल्कुल चुपचाप थे, बिल्कुल शांत थे, बाबा ने एक भी जवाब नहीं दिया। और फिर बाद में कलेक्टर ने उनको चुप किया, फिर जो भी सवाल पूछे बाबा ने बिल्कुल उसके युक्तियुक्त उत्तर दिए, वो संतुष्ट भी हो गए उससे। पर दादी ने कहा कि मैं बहुत, मतलब मुझे अचंभा था कि बाबा ने एक भी बात का, उनकी एक भी गाली का ऐसा उत्तर नहीं दिया। तो ये बाबा की सहन शक्ति थी, वो सहन शक्ति ने कितना सहज उन परिस्थितियों को बाबा से बाबा को पार कराया। तो एक तो निश्चय, हिम्मत, जिसको कहा हिम्मत ए बच्चे मदद ए बाप, हम सब जानते हैं, और फिर सहनशीलता की शक्ति जो थी बाबा की। हमेशा बड़ी बातों को बाबा छोटा कर देते थे, बहुत विघ्न आए। स्थापना में भी जब सेवाओं की स्थापना हुई तो भी कितने विघ्न आए, यहाँ तक कि जो धर्म पिता थे, धर्म पिता यानी जो भी महात्मा संत कहलाते हैं, उन्होंने समझा कि ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, या जो आर्य समाजी थे वो भी, उसके कारण भी कितने हंगामे हुए जब भारत में सेवाएं शुरू हुई। सिंध में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद जब सेवाओं की स्थापना होनी शुरू हुई तो भी हम सब ने, बाबा ने ये सब पार किया। जब हम बाबा के बच्चे ज्ञान में आते हैं, हम इतने स्तर पेपर तो नहीं पार करते, लेकिन हमारे सामने भी इस तरह की परिस्थितियां तो आती ही हैं। ये पेपर हमें भी पास करने होते हैं कि हमारे परिवार वाले जो ज्ञान में नहीं चलते, उनकी थोड़ी बहुत गालियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, कमेंट्स जिसको कहते हैं, टीका टिप्पणी, कुछ ना कुछ, अच्छा चलो देखो अब ये ब्रह्मा कुमार बने हैं, या जो भी, अब ये हमको क्या समझते हैं, हमारे हाथ का नहीं खाते हैं, तो क्या हम अपवित्र हैं, या जो भी पवित्रता की धारणा आप करते हैं तो उसके जो भी हैं, या बांधेले हैं, मतलब जिस भी रूप से परिवार का जो है वो विरोध तो सामना करना ही पड़ता है, करना पड़ता ही करना पड़ता। कोई है इसमें जो बंधन वाले बैठे हैं? हैं, थोड़े थोड़े हैं, भाइयों में भी हैं थोड़े थोड़े। तो फिर वही बाबा ने जिस तरह से पार किया, हमने देखा ना कि बाबा ने कैसे सहज तरीके से, क्योंकि इतनी लगन थी, इतना निश्चय था बाबा के ऊपर कि वो बंधन सहज कट गए, अपनी योग अग्नि से उन बंधनों को समाप्त कर लिया। और हम भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम भी जब ज्ञान में आए तब हमारे साथ भी यही स्थिति थी, हमारे माता पिता नहीं चाहते थे कि हम समर्पित होकर के सेवाएं दें। निश्चित है आप, उन्होंने डॉक्टर बनाया तो दुनिया की सांसारिक जो इच्छाएं अपेक्षाएं होती हैं उसी तरह की उनकी थी, और हमने बिल्कुल ही एकदम रास्ता परिवर्तन कर दिया। तो वो न सिर्फ हमारे माता पिता, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार थे वो भी, उनका भी विरोध हमें, मतलब उसका भी सामना करना पड़ा। पर मैं महसूस करती थी उस समय कि इतनी लगन थी कि हमें कुछ लगता ही नहीं था कि वो हमें कह रहे हैं, माना उनके कहने का रिंचक मात्र भी असर मनता होता ही नहीं था, कहां से सुना और कहां से निकल गया पता नहीं। तो बाबा की शक्ति इतना काम करती है, जब इतना निश्चय होता है हमारा बाबा के ऊपर, और क्या हमारे रास्ते बनाता है समझ में नहीं आता। इतनी सहज से मतलब बाबा ने निकाल दिया। अभी जैसे जब घर में थे, एग्जाम का रिजल्ट आया, डिग्री लेनी है, जाना है, हाँ, तो युक्ति आ गई कि यहाँ पोस्टिंग लेनी ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद नौकरी तो करनी ही है, तो नौकरी कहीं बाहर कर लेंगे तो फिर इनका वो हमारे ऊपर जो पूरा नियंत्रण का, घर में रहेंगे तो पूरा ध्यान है कि भाई ये कहाँ जाते हैं, कितना समय जाते हैं, जाना है नहीं जाना है, सारी बातें। पोस्टिंग ही दूसरी जगह करा दी, जब पोस्टिंग ही करा दी तो फिर ये बंधन सीधा खत्म हो गया। फिर उसके बाद जैसे हमने डिसाइड किया कि जब हमें ट्रेनिंग करनी है तो हम सेंटर पर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा कुमारी लाइफ, जो समर्पित लाइफ मैं सोच रही हूँ, तो वो समर्पित जीवन मुझे कितना अच्छा लगता है, या कहीं भी ऐसा डाउट मुझे होता है कि मैं इसमें चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी, तो वो सारी बातें मेरे लिए स्पष्ट हो जाएंगी और फिर मैं पूरा अपना निर्णय ले लूंगी। तो बस ऐसे ही मैंने डिसाइड किया मैं सेंटर पर रहने के लिए। बाद में हमारे माता पिता को पता चल गया कि जॉब करने तो गई है लेकिन सेंटर पर रह रही है, तो समझ गई कि इनकी तो पूरी लगन है, तो व्यर्थ है इनके पीछे। फिर हम बाबा से मिले और बाबा ने इतने अच्छे वरदान दिए उस समय कि बस उसके बाद तो जैसे ऐसे हुआ जैसे मक्खन से बात, अपने आप वो रास्ता बनता गया। और एक साल के अंदर अंदर तो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आ गया मधुबन के अंदर, हमने पास किया उसके बाद, और बाद में सीधा इंटर्नशिप करने के बाद मैं मधुबन आ गई और यहाँ मधुबन में अगले नेक्स्ट ईयर हॉस्पिटल बन के भी तैयार हो गया। तो बाबा ने हमारी पढ़ाई को भी उपयोग किया, जो एजुकेशन ली वो हॉस्पिटल में सेवाएं भी दी और साथ साथ जो एक शुभ संकल्प था कि समर्पित रूप सेवा देनी है वो भी बाबा ने उस संकल्प को भी पूरा किया। और फिर उसके बाद ही 2 साल के अंदर अंदर हमारे माता पिता भी ज्ञान में आ गए और वो आज तक भी इतना अच्छे से ज्ञान में चल रहे हैं पूरी धारणाओं सहित। तो देखिए उनका भी कल्याण हो गया। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि छोड़ा नहीं लेकिन उनका भी फिर कल्याण किया। तो हमें बाबा को फॉलो करना, हम वो करते जाएंगे तो हमारे राहें अपने आप आसान होती जाएंगी। वो देखने में मुश्किल लगती हैं, अब दूसरों को देखने में ऐसा लगता है देखो इनके जीवन में कितने विघ्न आ रहे हैं, कितनी परिस्थितियां आ रही हैं, हाँ कितना ये टेंशन में होंगे, कितना ये परेशान होंगे, दुखी होंगे। होते हैं बाबा है हमारे साथ और वो दुख हमें दुख महसूस ही नहीं होता। देखने वाले को दुख लगता है लेकिन हमें तो लगता ही नहीं कि कोई दुख है या कोई परेशानी। अब खाने पीने में लोग सोचते हैं इतना संयम ये कैसे रख लेते हैं, कैसे इनकी इच्छा नहीं होती कि मैं ये खाऊं वो खाऊं। होती है इच्छा? नहीं होती है। क्यों? समझ में आ गया और वो शक्ति भी बाबा से मिल जाती है। तो कोई सामने भी रख देगा ना तो भी नहीं खाएंगे, अभी कहेंगे नहीं नहीं। जैसे दुनिया में भी जो सच्चे भक्त होते हैं उनका व्रत होता है तो वो कभी भी अपने व्रत को नहीं तोड़ते हैं, चाहे भूखे मर जाएंगे, मना पानी निर्जल व्रत रख लिया पानी नहीं पीना है मर जाएंगे लेकिन अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। तो हमको भी बाबा कहता है धरत परिये धर्म न छोड़िए, चाहे जो भी हो जाए। फिर बाबा को हम देखते हैं यज्ञ में बेगरी पार्ट भी चला, बेगरी पार्ट के समय जब भारत में आए उस समय, और उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके कारण कई जो यज्ञ वत्स थे वो यज्ञ छोड़ छोड़ करके भी चले गए, लेकिन फिर भी। और उसमें भी जैसे हम सुनते हैं खाने के लिए कितने समय तक नहीं होता था, एक टाइम का खाना होता था दूसरे टाइम का खाना नहीं होता था। तो उसी समय में होली आने वाली थी, एक किस्सा जो दादियां सुनाती हैं कि होली आने वाली थी और बाबा ने, माना शिव बाबा की प्रवेशता होती थी ना ब्रह्मा बाबा के तन में, तो शिव बाबा ने प्रोग्राम दे दिया कि होली पर सब बच्चों को जलेबी खिलाएंगे, भोग में सबको जलेबी दी जाएगी। तो जब ये बात आई तो जो भंडारी थी भोली दादी भंडारी थे उस समय, तो भोली दादी बाबा के पास आई कि बाबा जलेबी का प्रोग्राम तो दिया है लेकिन जलेबी का कोई सामान हमारे पास नहीं है, तो जलेबी कैसे बनेगी। अब ये रात की क्लास की बात थी और सुबह भोग लगना था, तो फिर बाबा ने कहा ये ऑलमाइटी बाबा का प्रोग्राम है, अगर बाबा ने प्रोग्राम दिया है तो जलेबी बनेगी, आप निश्चिंत रहो हम सब बाबा के हैं, बाबा को जलेबी खिलानी है खिलाएगा। ऐसे बाबा बोल के जैसे कि कोई मतलब बाबा को चिंता ही नहीं है उसकी कि इतने सब लोगों के लिए जलेबी कैसे बनेगी और रात भर में क्या प्रबंध हो जाएगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। पर हुआ ये कि बाबा कैसे देखो टच करता है, तो एक माता थी जो माउंट आबू से आती थी, ऐसे वो पूरी तरह से बीके नहीं थी लेकिन उसकी ब्रह्मा बाबा के प्रति बहुत भावना थी, तो वो हमेशा उनके परिवार वाले जो हैं वो दान करते थे कहीं कहीं। तो उसने अपने पति को कहा था कि मुझे ब्रह्मा बाबा को भी दान करना है, मतलब मेरी भावना है कि मैं देकर आऊं कुछ धन इनके यहाँ। लेकिन उसका पति विरोधी था, ब्रह्मा कुमारी उसका विरोधी था, तो उसने कहा कि तुमको कहीं और दान देना है तो मुझे कहो, इनके बारे में कभी नाम मत लेना, इनके लिए मैं नहीं दूंगा। तो नहीं देता था कभी भी, लेकिन उस रात को क्या हुआ, शिव बाबा ने क्या उसको टच किया वो तो बाबा ही जानते हैं। वो रात के समय ही बोला अपनी पत्नी से कि आज मेरे मन में संकल्प आ रहा है कि तुम मुझे कहती हो ना कि मुझे उनको जाकर दान देना है तो तुम देकर आना, और उसने जितना पैसा देना था वो पैसा भी निकाल करके दे दिया और कहा कि सुबह सुबह पहला काम यही करना कहीं मेरा मन ना बदल जाए। तो पैसा दिया और वो सुबह सुबह माता जो है सबसे पहले आई बाबा के पास और बाबा को आकर के वो धन देकर के गई और फिर उससे सारा सामान आया और जलेबी बनी। तो देखो ये बाबा का काम है ना। तो ये तो जो भी बाबा के सेंटर जलाने वाली बहनें हैं उन सबके इतने अनुभव होते हैं ऐसे कैसे बाबा काम कराते हैं। और वो कार्य जो है अगर हम समर्पित बुद्धि हैं कि बाबा करण करावन हार है और बाबा का ही कार्य है, अपने आप वो सब कुछ होता है। तो विघ्न वो विघ्न नहीं रहता, जो हमारी लगन है वो विघ्न को सहज पार करा देती है। और निश्चय बुद्धि विजयंती जो हमें बाबा कहता है वो सचमुच हम निश्चय बुद्धि विजयी हो जाते। संकल्प मात्र भी संशय नहीं आना चाहिए। होता ये है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि मनुष्य बुद्धि है ना, और अगर हम मनमत पर चले जाते हैं श्रीमत की बजाय, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं संशय अपने में या बाबा में भी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। अब जैसे बाबा ने तो बिल्कुल नहीं सोचा ना, ये बाबा ने तुरंत छोड़ दिया कि ये ऑलमाइटी बाबा का प्रोग्राम है, बाबा जाने बच्चों को कैसे जलेबी खिलानी है, मेरा प्रोग्राम तो है नहीं, हम सब बाबा के हैं। तो बस बाबा ने किया वो कार्य। यहाँ तक कि भक्तों के भी अनुभव होते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि ये तो तुम तो डायरेक्ट बच्चे हो मेरे, लेकिन भक्तों के भी कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि भगवान कैसे मदद करते हैं, जिसे वो लोग फिर चमत्कार का नाम देते हैं कि ये तो जैसे चमत्कार हो गया, कि असंभव जो है वो संभव हो गया। फिर बाबा ने अशरीरी स्थिति के अभ्यास पर बहुत बल दिया। ये सब हम सुनते हैं कि ये विशेष पुरुषार्थ बाबा ने किया। शुरू में तो लिख लिख करके मैं आत्मा हूँ, अपने सब के प्रति, जो भी उस समय यज्ञ में बच्चे थे उनको, कि मेरी इनके प्रति आत्मिक दृष्टि ही होनी चाहिए। और फिर बाद में भी जब फरिश्ता स्थिति का बाबा को पता चला कि मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है, जो सूक्ष्म बन मेरा स्वरूप है वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, और अभी जो मेरा स्वरूप है वो पुरुषार्थी स्वरूप है, तो बाबा ने पूरी लगन से वो पुरुषार्थ किया। और इसीलिए जब भी भाई बहने मिलते थे उस समय बाबा से, तो बाबा की दृष्टि मिलते ही अशरीरी हो जाते थे। हम सुनते हैं उनके अनुभव, सुनाते हैं कि हम सोचकर जाते थे हम बाबा से ये कहेंगे, हमारे मन में ये प्रश्न है, बाबा को ये सुनाएंगे, बाबा के सामने गए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो अनुभव इतना पावरफुल होता था, यानी विदेही स्थिति का जो अनुभव था, कि जैसे सब प्रश्नों के उत्तर बिना कहे ही मिल गए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और कई बार जब बाबा को समाचार भी सुनाते थे, सेवा समाचार भी सुनाते थे, तो कहते हैं कि जैसे बाबा बीच बीच में जैसे है ही नहीं, ऐसा फील होता था कि बाबा जैसे गुम हो गए, बीच में न्यारे हुए। और ऐसा भी नहीं कि बाबा ने नहीं सुना, बाबा ने सुना भी सही और सुनते हुए बीच बीच में न्यारे भी हो गए। तो बाबा हमें अभी भी ये अटेंशन दिलाते हैं कि हम बच्चों का ये पुरुषार्थ होना चाहिए, जैसे ही अंतिम समय नजदीक आ रहा है, तो जितना हो सके हम अपनी विदेही स्थिति को बीच बीच में अनुभव करें। मुझे याद है बाबा ने मुरली चलाई थी एक बार कुछ साल पहले, कि हर घंटे में कम से कम 5 मिनट, नहीं तो 2 मिनट भी, हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है। तब दादी जी थे, दादी प्रकाशमणि जी थे, फिर दादी जी ने उसके बाद 1 घंटे वाला जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो शुरू करवाया था, नहीं तो जो हमारे 5-6 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है वही चलता था। लेकिन अभी आप मधुबन में जब आते हैं तो हर घंटे भी 1 मिनट एक गीत बजता है, वो उसी के लिए कि हम अशरीरी हो जाएं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जहां भी हम व्यस्त हैं, उससे एकदम न्यारे होकर के विदेही स्थिति का भी थोड़े समय हम अनुभव करें। तो ये अंतिम पेपर में हमें बहुत मदद करेगा। बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास है। उस समय हम सोचेंगे ठीक है ना, हम उस समय अशरीरी हो जाएंगे, पर बाबा कहेंगे उस समय सोचते रहेंगे मैं आत्मा हूँ, और होगा क्या, सोचेंगे आत्मा और खींचेगा कौन, क्योंकि उस समय सारी परिस्थितियां हलचल में लाने वाली होंगी, बुद्धि को खींचने वाली होंगी। आज भी देखो कोरोना की जब स्थिति पैदा हुई तो कैसी परिस्थितियां थी, मन बुद्धि को हलचल में लाने वाली परिस्थितियां थी ना। लेकिन जो बाबा के ज्ञान, योग और श्रीमद के आधार पर चलने वाले थे वो उसमें भी अचल रहे। तो वो शक्ति हमारी तब काम करेगी जब हमारा अभ्यास पूरा होगा। अगर वो अभ्यास कम होगा तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां हमें खींच लेंगी, फिर बाबा कहता है कि पास नहीं हो पाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? पास विद ऑनर। पास नहीं होना केवल, लेकिन पास विद ऑनर होना है। तो वो अभ्यास जैसे बाबा ने किया, उसके लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे हमें ऊंचा एग्जाम पास करना है तो स्टूडेंट कितनी मेहनत करते हैं, करते कि नहीं करते, समय देते हैं ना। तो ये भी हमारे लिए देवी देवता बनने का जो एग्जाम है, ये ऊंचा एग्जाम है और उसके लिए हमें थोड़ी तो मेहनत करनी है। तो ये मेहनत हमें जरूर करनी है कि बीच बीच में हम विदेही स्थिति का जरूर अभ्यास करें। और बाबा ने सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति रखी। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना, जैसे ही बाबा ने समर्पण किया उसके बाद कभी बाबा की बुद्धि किसी आकर्षण में नहीं गई। लास्ट तक बाबा बिल्कुल सिंपल लाइफ में रहे। सब साधन ऐसे नहीं कि उस समय उपलब्ध नहीं थे, लेकिन बाबा, हम जानते हैं जो कमरा बाबा का था उसी कमरे में रहे। वो झोपड़ी थी बाबा की, साधारण सी झोपड़ी थी, उसी में बाबा मिलते थे। हालांकि आयु अधिक थी, अधिक आयु के अनुसार शरीर के लिए सुविधाएं भी चाहिए होती हैं, लेकिन बाबा की जो खटिया थी, आज भी हम बाबा के कमरे में देखते हैं कितनी सिंपल सी खटिया है, तो जो खटिया थी वही खटिया। हालांकि जो बाबा के बच्चे थे वो बाबा को बहुत अच्छी अच्छी चीजें ला करके देते थे कि बाबा ये आपके लिए है, ये आपको ही यूज करना है, हम आपके लिए लाए हैं, आपको किसी को नहीं देना है। बाबा के नाम से लाते थे, लेकिन बाबा क्या करते थे, फिर भी जैसे ही वो गए उसके बाद वो चीजों को सेवा में लगा दिया। अपने प्रति कभी भी बाबा उसे यूज नहीं करते थे। इसको कहते हैं त्याग का भी त्याग। बाबा ने जो त्याग किया उसका जो फल मिला, उस त्याग का भी, उस फल का भी त्याग किया, उस फल को भी कभी स्वीकार नहीं किया बाबा ने। तो हमारा भी जीवन जो है वो, जो बाबा ने हमें कहा है कि हमें हमेशा बीच की लाइफ में जीना है। बाबा हमें ये भी नहीं कहते कि हमें साधनों को यूज नहीं करना है। यूज करें, लेकिन वो साधन हमारी साधना से हमें नीचे नहीं ले आए, हमारी साधना को भंग नहीं करे। यानी साधनों का हमेशा हमें सदुपयोग ही करना है। साधन है तो यूज करो, वो बाबा हमें कहते हैं। लेकिन बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं हो हमारी, कि एकदम आरामदायक जीवन है हमारा, तो लगे ही नहीं कि ये तपस्वी हैं, ऐसा भी नहीं। और एकदम कम भी नहीं कि गरीब, एकदम जैसे गरीब, जैसे वो सन्यासी रहते हैं, बिल्कुल हर एक चीज, मतलब बिस्तर भी प्रयोग नहीं करेंगे सोने के लिए, चप्पल भी नहीं पहनेंगे, तो इस तरह से भी हमें नहीं जीना है। लेकिन बीच का जीवन, जिसे बाबा ने कहा मध्यम मार्ग हमारे लिए, हम बाबा के बच्चों के लिए है। तो ऐसे ही कोई भी पदार्थों की एक्स्ट्रा आकर्षण, कोई भी व्यक्तियों की एक्स्ट्रा आकर्षण, जिसके लिए बाबा कहता है वफादार होना, यानी बाबा के प्रति ही हमारी आकर्षण है, एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे बाबा के लिए सदा बाबा ही, बाबा के प्रति वफादार रहे, ऐसे ही हम बच्चों को भी सदा ही बाबा के प्रति वफादार रहना है। फिर लास्ट में बाबा ने जो कर्म बंधन मुक्त बने बाबा, वो भी हम देखते हैं कितना सहज बने, कितना सहज कर्म भोग से, कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की। कितना सहज शरीर छोड़ा बाबा ने, बैठे बैठे क्लास कराकर आए। पहली बात तो मुरली से कितना प्यार कि लास्ट दिन तक भी बाबा ने मुरली चलाई। बाबा कहते हैं मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। ये हमने दादियों में भी देखा कि लास्ट दिन तक भी जैसे मुरली प्राण है, मुरली ही जैसे जीवन है। फिर उसके बाद आए, बैठे, बच्चे सामने थे, सब कुछ था, यज्ञ के प्रति पता था कि बाबा को तो अंदर से पता चल गया था ना, जैसे बाबा ने कहा ना अच्छा बच्चे विदाई लास्ट क्लास के बाद क्या कहा बाबा ने, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनो। और फिर ऐसे बाबा कभी नहीं कहते थे अच्छा बच्चे विदाई जैसे हम सुनते हैं अंतिम शब्द, तो बाबा को तो अंदर से पता चल गया था। तो ये चिंता नहीं कि इतना बड़ा यज्ञ इतने बच्चे क्या होगा कैसे होगा, यानी मोह वाली मोह का अंश भी नहीं था बाबा के अंदर। जो शिव बाबा का है बाबा ही संभालने वाला है, बाबा ही जिम्मेवार है। तो इसीलिए किसी से कुछ भी नहीं कहा बाबा ने, एक शब्द भी नहीं। सिर्फ दादी का हाथ में जो हाथ लिया वो एक इशारा था और वो इशारा दिया और जैसे कि उड़के, जैसे कहते पंछी उड़के चला गया, बहुत सहज अपने देह का त्याग किया और बाबा अपने वतन में चले गए। तो अंतमति सुगति बाबा हमें कहता है। तो सारे जो हमारे जीवन का पुरुषार्थ है, जो तपस्या है, वो इस रूप में कि अंत समय में हमें एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद न आए, ऐसा हमारा अंत होना चाहिए। और हमेशा कोई ना कोई कर्म भोग तो होता ही है, क्योंकि शरीर में कोई ना कोई कारण तो बनता ही है, तभी अंत समय नजदीक आता है। तो ये पुराना शरीर है, वो देह त्याग किस तरह से हो, सहज रीति से हम उस देह का त्याग करें, उस देह का बंधन हमें ना खींचे, या उसका जो दुख दर्द है वो हमारी बुद्धि को ना खींचे। तो ये हम पहले से ही उस चीज को अभ्यास करें जिसको बाबा ने अभी भी कहा इस मुरली में, जो अभी पीछे मुरली चली, कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली करावनहार हूं, ये इंद्रियां करणहार हैं। तो डिटैच रखना अपने आप को, वही जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास जितना हमें अधिक होगा उतना सहज हम अपने को इस देह से डिटैच कर पाएंगे। तो जब हम फॉलो फादर करते हैं, जो बाबा हमारे सामने एक सैंपल है जिसे हम कहेंगे, और उस सैंपल को अपने सामने रखते हुए, उनके जीवन को अपने सामने रखते हुए चलते हैं, तो हमारे जो भी प्रश्न आते हैं, हम प्रवृत्ति में रहते हैं, संसार व्यवहार में रहते हैं, या जो भी हम सेंटर पर रहते हैं, कहां भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं रहते हुए, हमें अपने सब प्रश्नों के उत्तर बाबा के जीवन को देखने से मिल जाते हैं, कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे तो हमारा मार्ग सहज हो जाएगा। ओम शांति।